آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
آسٹریلیا میں جلد بڑھیں گی بجلی کی قیمتیں۔ امریکی راشٹرپتی بائیڈن نے بندوقوں کو لے کر قانون بدلنے کی بات کہی، اور آئی پی ایل میں لکھنؤ کو ہرا کر بنگلور کی ہوئی جیت۔ آپ کو بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں دیش کے کچھ حصوں میں بجلی کے بل کی قیمتیں آسمان چھونے کی امید میں ہیں، جس کے بعد لاکھوں لوگ پربھاوت ہو سکتے ہیں۔ انرجی ریگولیٹر کے ایک نرنے کے بعد بیس بجلی کی قیمتوں میں 18.3% تک کی وردھی ہوگی، اور سب سے بری طرح پربھاوت کھیتروں میں کوئنز لینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز کے ہونے کا انومان ہے۔ نئی قیمتوں کو 1 مئی سے نہ بڑھا کر گروار یعنی 26 مئی سے بڑھانے کے نردیش دیے گئے تھے۔ جسٹن آلیور آسٹریلین انرجی ریگولیٹر بورڈ کے سدسیہ ہیں، اور انہوں نے ایس بی ایس نیوز کو بتایا ہے کہ قیمتوں میں بڑھوتری کے کئی کارن ہیں۔
It's mainly wholesale cost of supply, and the chief driver there, to be honest, is fuel. It's coal and gas, and it's very expensive right now, and it's been getting expensive for a while, and that's, you know, in no small part due to global events, what's happening in Europe, but also demand more generally, and that's forecast to continue, at least in the market at the moment, over the course of the year.
پردھان منتری اینتھنی البنیزی کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار آرتھک روپ سے مضبوط ہونے کے لیے کڑا پریاس کرے گی اور چناؤ ابھیان کے سبھی وعدوں کو پورا کرے گی۔ ریزرو بینک کے ساتھ بیٹھک کے بعد کوشادھیکش جم چالمرز نے سویکار کیا ہے کہ بیاز دریں نشچت روپ سے بڑھیں گی اور اس کا آرتھک وکاس پر اثر پڑے گا۔ شری البنیزی کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار کو پریاپت آرتھک چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پچھلی سرکار نے آرتھک استھتی کو پہلے کی تلنا میں بدتر بنا دیا ہے۔ اس وشے پر اسکائی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا،
I want to make sure that we have an economy that works for people, not the other way around. We made commitments at the election campaign. We will stand by all of them. We'll go through line by line our budget in order to be fiscally responsible. And I'm sure at the end of that process, we will get a better outcome for the nation than the sort of, quite frankly, rank rorting that we saw of public funds under the former government.
آسٹریلیا میں فرسٹ نیشنز بچوں کا پرتندتو کرنے والے راشٹریہ سموہ نے ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈر بچوں کے لیے ایک سمرپت آیوکت کی ستھاپنا کا احوان کیا ہے۔ نیشنل ایبوریجنل اینڈ آئی لینڈر چائلڈ کیئر کے سچیوالے یعنی ایس این اے آئی سی سی کا ماننا ہے کہ برنگنگ دیم ہوم رپورٹ بننے کے 25 سال بعد آج بھی بہت سے سودیشی بچوں کو اپنے پریوار سے دور کیا جا رہا ہے۔ برنگنگ دیم ہوم رپورٹ سرکار کے دوارا جاری ہوئی سٹولن جنریشن پالیسی کے بارے میں بتاتی ہے۔ سٹولن جنریشن پالیسی کے تحت 1910 اور 1970 کے بیچ سودیشی بچوں کو ان کے پریوار سے زبردستی دور کیا گیا تھا۔ اس راشٹریہ سموہوں کے سی ای او کیتھرین لڈل کا کہنا ہے کہ اس دشا میں اور ادھک پریاس کرنے کی ضرورت ہے۔
We've got more than 21,000 children in out of home care services at this moment in time, and a significant number of those children will not be reunited with their families, and we know that that number will continue to escalate. You'll hear in some states and territories where people are saying that there's seven generations removal in a particular family. This is really, it is unfathomable to think about that.
فیڈرل لبرل پارٹی کی سانسد جولین سائمنز نے برسبین کی رائن سیٹ سے ہار مان لی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ وہ گرینز کے خلاف ہاری ہے۔ میلبرن میں نیتا ایڈم بینٹ کے بعد ایلیزابیتھ واٹسن براؤن پرتندھی سبھا میں چنے گئے تیسرے گرینز دل کے سانسد بن گئے ہیں، اور سانسد میکس چینڈلر میتھر کوئنز لینڈ کی گرفتھ سیٹ پر پورو لیبر پارٹی کے فرنٹ بینچر ٹیری بٹلر کا ستھان لے رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے انت میں ہوئے فیڈرل چناؤ سے ابھی بھی कुछ मुट्ठी भर सीटें हैं जिन्हें घोषित किया जाना बाकी है। इसमें ब्रिस्बेन की सीट भी शामिल है जो लिबरल पार्टी के ट्रेवर इवांस के पास है। अमेरिका के टेक्सास राज्य के एक प्राथमिक विद्यालय में 19 छात्रों और 2 शिक्षकों के नरसंहार के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन देश में बंदूकों को लेकर कानून में बदलाव का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि अपराध करने वाले 18 वर्षीय सेल्वाडोर रामोस ने हमले से लगभग आधे घंटे पहले फेसबुक पर अपने इरादे पोस्ट किए थे। इसी के साथ न्यूज रिपोर्ट के अनुसार उसने हमले के पहले कुछ दिनों में 2 राइफलें और बड़ी मात्रा में गोला बारूद खरीदी थी। अमेरिका में देश के संविधान में दूसरे सुधार के अनुसार खुद का बंदूक जैसे हथियार पाना सुरक्षित है, जिसकी 1751 में प्रमाणित किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उस ढांचे के भीतर भी हमेशा प्रतिबंध रहे हैं और अब और सख्ती की जरूरत है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया कि वे और उनकी पत्नी जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त उवाल्डे शहर का दौरा करेंगे।
When in God's name will we do what needs to be done to, if not completely stop, fundamentally change the amount of the carnage that goes on in this country? I'm just sick and tired of what's going on. It continues to go on. Second Amendment is not absolute. When it was passed, you couldn't own a cannon. You couldn't own certain kinds of weapons. It's just always been limitations. The idea that an 18-year-old can walk into a store and buy weapons of war designed and marketed to kill is, I think, just wrong. Just violates common sense.
क्वींसलैंड सरकार स्वस्तिक सहित नफरत के प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जारी कर सकती है। यदि यह कानून पारित हो जाता है तो घृणा या भय को भड़काने वाले प्रतीकों को प्रदर्शित करना एक अपराध बन जाएगा। लेकिन इस कानून के बाद बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म को मानने वाले लोग, जो स्वस्तिक को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं, वो नाराज हो सकते हैं। आपको बता दें कि क्वींसलैंड की कानूनी मामलों और सुरक्षा समिति ने घृणा अपराधों से निपटने के लिए 17 सिफारिशें की थी। प्रीमियर एनेस्थेशिया पालशे ने बताया कि इस निर्णय का विचार गंभीरता से हो रहा है।
Late last year, police seized a Nazi flag flown near a Brisbane synagogue.
Shame.
Only a few months earlier, a train carriage in the suburbs was graffitied with swastikas and Nazi slogans.
Shame.
The member for Capella Bar had a swastika painted on his electorate office.
Shame.
The Queensland Jewish Board of Deputies said it showed a rise of anti-Semitism that cannot be ignored. Mr. Speaker, our government agrees. Let me make this absolutely plain. Nazism is evil.
विक्टोरिया राज्य ने भी नफरत के प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ऐसा ही बिल पेश किया। इसी के साथ न्यू साउथ वेल्स सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। साउथ ऑस्ट्रेलिया अगले सप्ताह के स्टेट बजट से पहले व्यवसायों की मदद करने और ज्यादा नौकरियां उपलब्ध करने के लिए $100 मिलियन का आर्थिक सुधार फंड शुरू कर रहा है। इसके तहत अगले 4 वर्षों में अनुदान के कई दौर शुरू होंगे। प्रीमियर पीटर मालिनोस्कास का मानना है कि ये पहल महामारी के बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक सुधार लाने में मदद करेगी। उम्मीद है कि इसके बाद अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां राज्य में निवेश करेगी। अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 1675 मामले सामने आए हैं। वही कोविड-19 महामारी से पिछले 24 घंटों में 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब सुनते हैं डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 71 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.96 रुपये हो गई है। टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में क्वारंटीन मोटेट को हराकर अपनी 300वीं ग्रैंड स्लैम के मैच में जीत हासिल की। नडाल ने सीधे सेटों में जीत हासिल करते हुए टूर्नामेंट के तीसरे दौर में अपना स्थान पक्का कर लिया। आपको बता दें कि उनके पास पहले से ही 13 रोलैंड गैरोस खिताब है और इस प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान उन्हें चोट भी लगी थी। IPL 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ को 14 रनों से हराकर क्वालीफायर 2 में एंट्री कर ली है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए बैंगलोर ने 4 विकेट पर 207 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ की टीम पूरे 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 193 रन ही बना सकी। इस मैच में रजत पाटीदार ने करियर का पहला शतक जड़ा और 54 गेंदों पर 112 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम के लिए जीत के हीरो बने। इस जीत के साथ बैंगलोर अब क्वालीफायर 2 में पहुंच गई है, जहां 27 मई को उसकी भिड़त राजस्थान रॉयल्स से होगी। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में 1 या 2 बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में भी 1 या 2 बौछार के साथ वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 16 डिग्री तक जाएगा। कैनबरा में 1 या 2 बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। सिडनी में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 21 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में भी बारिश की संभावना के साथ वहां का न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 24 डिग्री रहेगा। डार्विन में धूप रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में धुंध भरी धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं, वहाँ हम हैं।